हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 और 5 अंतिम पाठ। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अख्यांतिमरंगस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है विभूति योग अर्थात भगवान का ऐश्वर्य। शुरू में भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं क्योंकि तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए सदैव तुम्हारी हित के विषय में बोलता हूँ। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको तुम गौर से सुनो क्योंकि ये तुम्हारे ही हित के लिए है। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच। ये सर्वश्रेष्ठ शब्द हैं, सर्वश्रेष्ठ वाक्य हैं। और क्यों कह रहा हूँ, यत्तेहं प्रियमाणाय क्योंकि तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हें अपना प्रिय मानकर वक्ष्यामि हित काम्य तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूँ। और उसके बाद कहा नमे विदु सुरगण प्रभवम न महर्षया अहम आदिर की देवाना महर्षिणाम से सर्वशा। वास्तव में भगवान इतने महान हैं कि वो स्वयं बता रहे हैं कि मुझे तो ना सुरगण जानते देवतागण जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ इसलिए कोई भी मुझे जान नहीं सकता। परंतु यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो ये जान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ तो और अनादि हूँ और समस्त लोकों का महेश्वर हूँ, तो मानो कोई कहे कि अजन्मा
तो आत्मा भी है, भगवान कहते न जायते मिलियते वा कदाचन, और अनादि भी है क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन भगवान जो है वेत्ति लोक महेश्वरम, समस्त लोकों के महेश्वर हैं, और भगवान कहते असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापय प्रमुच्यते, जो ये जान लेता है वो मोह रहित हो जाता है। और यहाँ पर भगवान उसका पहला फायदा बता देते हैं, जो भगवान के विषय में सही तरह से जान लेता है, भगवान पहला उसका लाभ बताते क्या, असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापय प्रमुच्यते, कि वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और उसका दूसरा लाभ क्या होता है वो आगे भगवान श्लोक नंबर 7 में बताएंगे कि एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नास्त्र संशय एताम विभूतिम योगम च, जो इस प्रकार मेरे ऐश्वर्य को मेरी विभूतियों को जान लेता है, मम यो वेत्ति तत्त्वतः, जो मुझे तत्व से जान लेता है, सो अविकल्पेन योगेन, अब विकल्पेन का मतलब होता है निश्चित रूप से, उसमें कोई संशय नहीं है, अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जिसको अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभ पार्थ, बस ये अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए फिर मेरा प्राप्त होना कठिन नहीं है, तस्याहं सुलभ बहुत आसानी से मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। और वो कैसे प्राप्त होती है, जब हम भगवान के विषय में जानते हैं। और उसके उपरांत भगवान श्लोक नंबर 4 और 5 में कहते हैं कि संसार के जितने भी जीवों के अंदर जो जो गुण हैं वो सब मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और वो कौन कौन से गुण हैं, यहाँ पर भगवान ने 20 क्वालिटीज के विषय में बताया। बुद्धि ज्ञान असमोह, बुद्धि का मतलब है हमारे अंदर वो क्षमता जिसके द्वारा हम ये समझ सकें कि क्या गलत है और क्या सही है, और हमारे लिए क्या हितकर है क्या नहीं है। और जैसे मैंने बताया था कि बुद्धि ही इस शरीर रूपी रथ को चलाने का सारथी है, तो इसको सही डायरेक्शंस में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो सही निर्णय ले सके। और वो तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, तब मन विचलित नहीं होगा, और जब मन विचलित नहीं होगा तो बुद्धि भी सही हो जाएगी। उसके बाद है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ अत्यंत सुंदर है, ये कोई भौतिक नॉलेज नहीं, बल्कि ज्ञान का मतलब होता है आत्मा और पदार्थ के विषय में जानना। इस संसार में जो भी कुछ सिखाया जाता है वो भौतिक इंद्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए या भौतिक इंद्रियों के विषय में बताया जाता है, भौतिक संसार के विषय में बताया जाता है, परंतु वो तब सब क्षणिक है। वास्तविक ज्ञान यह है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का कल्याण तब होता है जब वो भगवान का भजन करती है। उसके बाद असम्मोह यानी संशय से मुक्ति। तो ये भगवत भक्ति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि हमें संशय न हो, हमें हमारे हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। और वो तभी संभव है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जो शुद्ध भक्त हैं, जो हमारे सीनियर हैं, उनके द्वारा शास्त्रों को श्रवण करेंगे और अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करेंगे, तभी हम असम्मोह यानी संशयों से मुक्त हो सकेंगे। उसके बाद क्षमा। क्षमा का मतलब है फॉरगिवनेस। बहुत ही सुंदर बात है जो कहा जाता है कि वी गेट 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 एंड फॉरगिव, कृष्ण गिव 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 एंड फॉरगिव। वो हम जो है वो भगवान से प्राप्त करते रहते हैं और एक दिन भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, और भगवान है, इतनी करुणा है उनके अंदर
कि वो देते रहते हैं देते रहते हैं देते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं कि मैंने उन्हें इतना दिया फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। मतलब यहाँ पर फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना चाहिए, जो हमारे जो अपराध हैं, अपराध छोटे छोटे करते हैं उनको क्षमा कर देना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मैंने कभी इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण वो आज ऐसा कर रहा है। क्योंकि हृदय के अंदर यदि क्षमा भाव नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तरोरपि सहिष्णुः, हमें सहिष्णु बनना चाहिए, जो हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, हमें किसी के विषय में हृदय के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि मुझे भी मुझे मेरे पास भी यदि क्षमता होती तो मैं उसे सिखाता नहीं। हृदय से क्षमा कर देना चाहिए। और आगे है सत्य, जिसके विषय में हमने पढ़ा कि सत्य का अर्थ क्या है, कि वस्तुओं को सही सही जीवों के भले के लिए बताया जाए। और भला किससे होगा? भगवत भक्ति से, भगवान के विषय में श्रवण करने के। अगर कुछ और किसी को बताया जाता है तो उससे उसका कोई भी कल्याण नहीं होगा। उसका कल्याण तभी होगा जब वो कृष्ण के विषय में सुनेगा, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, केवल कृष्ण ही सत्य है, तो उन्हीं के विषय में अपनी जीभा से बात करनी चाहिए। आगे है दमः। दमः का मतलब होता है इंद्रियों पर कंट्रोल करना, मतलब इंद्रियों को अनावश्यक विषय भोग की ओर प्रेरित नहीं करना चाहिए, बल्कि संयमित रखना चाहिए। क्योंकि यदि इंद्रियां जो हैं वो अलग अलग वस्तुओं की ओर आकर्षित रहेंगी, फिर क्या होगा? फिर मन भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता, बस इतनी इंद्रिय तृप्ति कि हम जी सकें। और इससे क्या होगा? अगर हम इंद्रियां संयमित रहेंगी तो उसके बाद है शमः, यानी हमारा मन भी संयमित रहेगा, वरना तो मन इतना विचलित हो जाएगा कि हमारी बुद्धि को भी विचलित कर देगा और हम कभी भी अपने गोल की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। उसके बाद शमः के बाद है सुखम दुखम। सुख यानी जो कृष्ण भावना अमृत के अध्ययन के ज्ञान जो ज्ञान है उसमें अगर सुविधा प्राप्त हो रही है, भक्ति करने में अगर किसी जीव आत्मा को सुविधा प्राप्त होती है, वास्तविक सुख वही है। क्योंकि भले भौतिक जगत के कितने ही सुविधाएं मिल जाए, वो हमें सुख नहीं दे सकती। धन हमें सुविधा तो प्रदान कर सकता है, लेकिन हृदय का सुख शांति केवल भक्ति से मिल सकती है। तो जीव का वास्तविक सुख कृष्ण भावना अमृत में है। और दुख क्या है? कि हमें भक्ति करने का चांस ना मिले। सबसे बड़ा दुख यही है कि हमें भक्तों का संग ना मिले और हम भक्ति ना कर सकें किसी कारण से। तो जीव का दुख केवल यही है। और उसके बाद भावा। भावा मतलब जन्म लेना, जिसके विषय में हमने बहुत सुंदर पढ़ा कि जन्म तो केवल शरीर का होता है, आत्मा तो कभी भी नहीं जन्मती है। और मृत्यु मतलब शरीर की होती है, आत्मा तो अपने सफर को आगे बढ़ाती है। इसलिए जन्म सार्थक तब होता है जब हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अगर ये जीवन जो है, मनुष्य जीवन तभी सक्सेसफुल है जब अंति नारायण स्मृति, जब हम जीवन के अंत में भगवान को स्मरण कर सकें, और तभी संभव है। इस भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, क्योंकि तुम्हारे जीवन की एक ही सच्चाई है कि तुम्हें मरना है, और उसके लिए मरना सक्सेसफुल तब होगा जब तुम मुझे स्मरण करोगे उस समय, वरना तो कुत्ता गधा कुछ भी बना दिए जाओगे। इसलिए हमेशा मुझे स्मरण करो, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। और उसके बाद सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। भय का मतलब होता है भविष्य की चिंता। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण अवश्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। भय तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर भागवतम का एक श्लोक बताया, भयं द्वितीया भिनिवेशतस्य। भय तो हमारी माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है
जो आश्वस्त है कि वो शरीर नहीं है बल्कि भगवान का अंश है, उसे किसी किस्म का कोई भय नहीं है। वास्तव में भय का मतलब है अज्ञानता, और अभय उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, जो जिसे याद रहता है कि कृष्ण सदैव मेरी सुरक्षा करेंगे, कृष्ण सदैव मेरे साथ हैं। पूरा संसार भी यदि मेरे खिलाफ हो जाए और कृष्ण मेरे साथ हैं तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यही अभय है। और उसके बाद अहिंसा के विषय में बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि अहिंसा का क्या मतलब है, कि लोगों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि उन्हें आत्म साक्षात्कार में सहजता प्राप्त हो, कि वो आसानी से भगवत भक्ति कर सकें, उन्हें ये बताया जाए कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति है जिससे तुम्हारे समस्त दुख दूर हो सकते हैं। अहिंसा मतलब किसी को कष्ट ना देना, यानी कि उसे ऐसा सर्कमस्टेंसेस, ऐसा उसको माहौल प्रोवाइड करना जिसमें वो आसानी से भगवान की भक्ति कर सके और समस्त दुखों से मुक्त हो सके। और समता का मतलब है कि ना तो किसी से ज्यादा राग करना चाहिए और ना ही किसी से द्वेष करना चाहिए, मतलब इक्वल रहना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हम कृष्ण भक्ति संपन्न करते हैं और वही वस्तुओं को ग्रहण करते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं, और उन वस्तुओं का परित्याग करते हैं जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। और अहंसा, समता, तुष्टि, तुष्टि बहुत ही सुंदर शब्द है। अगर किसी को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है जीवन में तो भले उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो आनंद से जीता है, और अगर वो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से तो चाहे उसे त्रिलोकी का राजा क्यों न बना दिया जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रहता। इसे भगवान के अशांतस्य कुतः सुखम, जिसे शांति नहीं है, जिसे संतुष्टि नहीं है, वो भला सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। और संतुष्टि उसी में महसूस करनी चाहिए जो हमारे पास है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला है, हमें भगवान से उसका थैंक्स करना चाहिए और कहना चाहिए थैंक यू कृष्ण फॉर द प्रेजेंट मोमेंट, मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं है। अगर हम भगवान से कंप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे पास, इसके बजाय ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ, तो इसका मतलब है भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं, भगवान के प्लानिंग्स पे भरोसा नहीं है। हम समझते हैं कि अपने लिए अधिक बेहतर सोच सकते हैं और कृष्ण ने हमारे लिए जो प्लानिंग की है वो सही नहीं है। वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता जो कि ये सोचता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यदि ऐसा किया होता तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की कृपा की झलक देखनी चाहिए। और उसके बाद है आज के चार टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, तपस, दानम, यशो, यश। तपस्या, तो यहाँ पर जहाँ से हमने कल स्टॉप किया था वहीं से पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तपस्या का अर्थ बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, और वो कौन कौन से विधि विधान है यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सह जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ की अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, किंतु सत्वगुण में रहकर जो कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तपस का अर्थ बताया है, और तपस्या क्या है जानते हैं कि जो चीज कृष्ण भावना में हमें उन्नति कराती है वही तपस्या हमें करनी चाहिए। और बताया जाता है उसमें सबसे पहली तपस्या क्या है कि हमें प्रातः काल उठ के भजन करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन जो है वो रजोगुण और तमोगुण में जाता है, लेकिन जब हम सुबह को उठ के भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो जो समय है ना, वो समय हमारी सहायता करता है कृष्ण की ओर हमारे मन को एकाग्र करने में। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले कठिन लगता है, आज का वातावरण ऐसा है कलयुग का कि नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमारी सहायता करो, हम उठना चाहते हैं, तो अवश्य भगवान सहायता करेंगे। और सबसे बड़ी तपस्या है कि हम अपनी जो जप संख्या है उसको सुबह सवेरे उठकर करने का प्रयास करें। जितना जल्दी हम अपना जप करेंगे ना, तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। और उसके बाद उसके अतिरिक्त जो है हमें एटलीस्ट अपने दिन में जितना जल्दी संभव हो अपनी साधना कंप्लीट करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, सेवा से भी इम्पोर्टेंस ज्यादा जो है वो मतलब सेवा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी साधना को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे अगर किसी को कोई और सेवा मिलती है, भले वो भगवान की ही सेवा है, लेकिन वो उनकी साधना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अब जैसे गुरु महाराज ने हमें जो नियम दिए हैं, आरती करनी है भगवान की और 16 माला का जप करना है, वो ज्यादा अधिक आवश्यक है। वो करने के बाद ही आप अपनी सेवा को अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक भक्त को सदैव ये सोचना चाहिए कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, केवल मुझे भगवान ने ये सेवा करने के लिए निमित्त बनाया है। वास्तव में ये कर तो कृष्ण स्वयं रहे हैं, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो केवल अपनी साधना जो मुझे गुरु महाराज ने प्रिस्क्राइब किए हैं, मुझे अपनी जप संख्या को अच्छे से करना है, मुझे अपनी सेवाओं को जो मेरी साधना है उसको अच्छे से करना है, उसके बाद जो मुझे सेवाएं मिली हैं वो भगवान स्वतः अच्छे से करवाएंगे। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो सेवाएं होती हैं, जो हमें सेवा मिली होती है, वो हमें हमारे साधना के कारण मिली होती है। अगर हम इस योग देखो कितने सारे लोग हैं संसार में, उनमें से किसी एक को ही चांस मिलता है भगवान की सेवा करने का, तो उसको ये चांस मिला है इसका मतलब है उसकी साधना पहले इतनी अच्छी थी कि उसको ये चांस मिला है। लेकिन आज अगर वो अपनी साधना अच्छे से नहीं करता, यानी अपना जप अच्छे से नहीं करता, तो फिर वो वापिस उससे अपॉर्चुनिटी ली भी जा सकती है, है ना। तो हमें अपनी सेवा के विषय में सोचना चाहिए कि ये मुझे इसलिए मिली है कि मेरी साधना अच्छी थी, तो इसलिए आज में मुझे अपनी साधना को परफेक्ट करना है, अपनी चैंटिंग को बहुत ही ध्यान से अच्छे से करना चाहिए। वो हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि जैसे मेरे पास सेवा इतनी ज्यादा होती है कि मैं चैंटिंग नहीं कर सकता, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज ने आदेश दिया है हमें अपनी माला को बहुत अच्छे तरीके से 16 माला को करना चाहिए, बाकी जो समय है उसको इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि हम उसमें अलग अलग सेवाएं जो भी हैं, जैसे प्रीचिंग की है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है, या फिर डीटी वर्शिप की है, या कुछ श्रृंगार की है, या ड्रेस बनाने की जो भी है, उसको इस तरह से हमें करना चाहिए कि हम अपनी सेवा के साथ साथ अपनी साधना को भी अच्छे से कर सकें। तो ये हमारी साधना जो है वो हमारी तपस्या है। और इसके अतिरिक्त क्या है कि हमें मास के कुछ महीनों कुछ दिनों में जैसे एकादशी को उपवास करना पड़ता है और भीम एकादशी के दिन निर्जल रखना पड़ता है, तो हो सकता है कठिन लगता होगा। जाहिर सी बात है भौतिक शरीर को तो दुख लगता है, प्यास लगती है, लेकिन फिर भी भक्ति में उन्नति करने के लिए इन सारे कार्यों को करना चाहिए, यही तपस्या है। ये वास्तव में सात्विक तपस्या है और कुछ तपस्याएं होती हैं रजोगुणी जो हम कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये तपस्या कर लूं तो बेटा मिल जाएगा, ये तपस्या कर लूं तो धन मिल जाएगा, ये तपस्या करूं तो पति मिल, इसलिए ये रजोगुणी तपस्याएं जो है हम करते हैं जो लोग वो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। और कुछ तमोगुणी तपस्याएं होती हैं, वो कैसे होती हैं, जैसे धरना करते हैं, राजनीतिक पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, वो सब करने से कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन तपस्या करनी चाहिए जो निर्धारित है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे गुरु महाराज ने दिए हैं। चार नियम का पालन करना चाहिए, एकादशी और विष्णु तत्व के दिनों में उपवास रखना चाहिए, और जो निर्जल एकादशी जन्माष्टमी इत्यादि उन उपवासों को रखना चाहिए, और इसके अतिरिक्त प्रभात साधना की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये हम करेंगे ना तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो गुरु महाराज ने हमें बताया है वो कार्य करने से हमें परफेक्शन प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है दान। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी दान के विषय में बताते कि जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, यानी कि 50% जितना भी आप कमाते हो वो कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य के लिए लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए लगाना चाहिए उसका 50%। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम है। शुभ कार्य में लगाना होता है ना, तो कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगाना केवल शुभ नहीं है बल्कि सर्वोत्तम, उससे अच्छा और कोई कार्य हो नहीं सकता। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य यानी निमित्त भी अच्छा है, अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए, यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों के उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वह सारा वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन यानी जिंदगी बसर करने के लिए और अन्य दूसरे अर्जन करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए समय नहीं होता है, सारा टाइम भक्ति करते रहते हैं। तो वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगता है, वे धन अर्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार अर्थ ऐसा करता है। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थियों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावना में जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थियों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करें। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है, अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए किसी सनक के कारण नहीं। श्री प्रभुपाद की जय हो। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याजम इति चा, कि कुछ भी हो जाए, आप चाहे किसी भी स्टेज में पहुंच जाओ, यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तपह कर्म पावनानी, जो बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त होते ना, अगर आप कुछ भी बन जाओगे तो उनके लिए भी यज्ञ दान और तपस्या जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्हीं को भी, महात्माओं को भी पवित्र करने वाले ये कार्य हैं। तो तपस्या तो हमने पढ़ा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें गुरु महाराज ने दिए हैं उनको अच्छे से करना, यही हमारी तपस्या है। और दान क्या है? श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दान अपनी जो आप कमाई करते हो उसका 50% जो है वो शुभ कार्य में लगाना, ये दान है। वैसे वैदिक कल्चर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उनमें केवल वैश्य जो है वो ही धन संग्रह करते हैं, उन्हीं के पास ज्यादा धन संग्रह होता है, क्योंकि शूद्र जो होते हैं उनको तो सैलरी मिलती है, वो तो सेवा करते हैं उसके बदले में, तो उनको इतना ही मिलता है जितना कि मुश्किल से उनको पूरा आता है। ब्राह्मण जो है वो किस पर सर्वाइव करते हैं? दान पर, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी धन अर्जित करने के लिए अन्य कार्य नहीं करते हैं, उनको जो दान मिलता है उसी पे संतुष्ट रहते हैं। और क्षत्रिय किस पर सर्वाइव करते हैं? टैक्स पर, जो उनको टैक्स मिलता है। उनका कार्य धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि उनका कार्य रक्षा करना है, इसकी सारे कंट्री की रक्षा करना है, और उनकी बदली में उसको टैक्स मिलता है जैसे राजाओं को मिलता था। तो ये जो कितने हमारे जो जितने भी वर्ण और आश्रम है, अभी आश्रम में क्या है, ब्रह्मचर्य जो होता है वो तो स्टडी करता है, वो भी धन नहीं जमा करता, और वैश्य जो होता है, सॉरी ब्रह्मचर्य ग्रस्त केवल धन अर्जित करता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को भी पालना होता है, दान भी देना होता है। और उसके बाद वानप्रस्थ होता है, वो भी धन जमा नहीं करता, और सन्यासी तो केवल भिक्षाटन पर ही अपना सर्वाइव करता है। तो सिर्फ वैश्य और गृहस्थ वही धन अर्जित करते हैं, ज्यादा धन केवल वही संग्रह करते हैं, परंतु दान हर एक को देना होता है, जितना जो जिस भी स्टेज पर आप हो। भले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना आप कमाते हो उसका 50% दान देना चाहिए, यानी दान ब्राह्मण को भी देना चाहिए, क्षत्रिय को भी देना चाहिए, वैश्य को, शूद्र को, सबको दान देना चाहिए। उसी से हमारा धन पवित्र होता है, हमारा मन पवित्र होता है। दान देते हैं तो आसक्ति समाप्त होती है, लेकिन किसको देना चाहिए, वो शुभ कार्य क्या है? तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि यह शुभ कार्य कृष्ण भावनामृत है। जो भगवान की भक्ति करते हैं या जो भगवान की भक्ति के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए प्रचार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए जिसे पता हो कि ये, इनको अगर हम दान देंगे तो ये भक्ति में लगेगा। वैसे वैदिक आदेश क्या है? ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनको दान इसलिए देना जाता है क्योंकि वे जो हैं वो सदैव आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं, और उन्हें दूसरा धन अर्जित करने के लिए उनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। तो खुद को ही जो गृहस्थी हैं और जो वैश्य हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमें ब्राह्मणों को, सन्यासियों को दान देना चाहिए, ताकि जितने ज्यादा ब्राह्मण, अभी देखो ब्राह्मण को दान मिलेगा तो वो जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो अच्छे तरीके से शास्त्र अध्ययन करेंगे, अच्छे तरीके से प्रीचिंग करेंगे, वो किधर आना जाना, जिधर जाकर उन्हें प्रीच करना होगा, जहां जहां पर जरूरत होगी वहां पर जाएंगे ना। अगर उन बेचारों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर वो कैसे प्रीचिंग करेंगे? हर चीज के लिए धन तो चाहिए होता है ना। अगर वो बड़े प्रोग्राम रखते हैं, वो जपा रिट्रीट रखते हैं या फिर संकीर्तन के प्रोग्राम रखते हैं जिसमें बहुत सारा धन चाहिए होता है, तो फिर वो कैसे करेंगे यदि हम उसको दान नहीं देंगे? और अगर ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते हैं तो कल्याण कैसे होगा? क्योंकि अगर भक्त लोग नहीं होंगे, ये सब आयोजन नहीं करेंगे, ये सब फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, तो फिर कल्याण कैसे होगा? हम तो फिर केवल ये खाली आहार निद्रा मय मैथुन में ही लगे रहेंगे। तो फिर हमारा ये कर्तव्य है
कि उन लोगों का सहयोग करें जो कि भक्ति के कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया आमतौर पर जो ग्रस्त होते हैं वो अपने जीवन को चलाने में ही लगे रहते हैं, खाली ग्रह कार्यों में ही लगे रहते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं। और ये भक्तों का, सन्यासियों का, वैष्णवों का कर्तव्य है कि वो घर घर जाकर उन्हें याद दिलाएं कि तुम्हें यह मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है केवल भोग भोगते रहो, और इस तरह से यदि करते रहो तो फिर तुम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी नहीं छूटोगे, तो फिर तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो जब ऐसे लोग जो हैं उनके पास धन होगा, वो अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होंगे, अब धन होगा तभी वो शास्त्र अध्ययन कर सकेंगे, शास्त्र खरीद सकेंगे, उनको ऐसा समय दे सकेंगे उनको उन सारे भक्ति के कार्यों को। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि सन्यासियों को और शुद्ध ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। भगवान ने दान भी तीन तरह का बताया है, तो दान जो है वो सोच समझ के देना चाहिए कि जो मैं दान दे रही हूँ क्या ये कृष्ण सेवा में लगेगा, क्या इससे जीवों का कल्याण होगा, या फिर नहीं होगा तो फिर वहां उन जगहों पर दान नहीं देना चाहिए, जहां पर कृष्ण भावनामृत की उन्नति होती है उन्हीं जगहों पर दान देना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी नंबर 19 है यश। यश बहुत ही सुंदर शब्द है और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से उसके विषय में बता रहे हैं। यश का मतलब होता है फेम, तो भगवान चैतन्य के अनुसार यश होना चाहिए। क्या कहते हैं महाप्रभु, जब महाप्रभु रामानंद राय से मिले तब पूछा महाप्रभु ने, बताओ रामानंद, कीर्ति मध्य कौन बड़ो कीर्तिमान, कीर्ति में यश में सबसे ज्यादा यशस्वी कौन है। तब भी बताते हैं कि वैसे तो प्रभु बहुत सारे लोगों को यश प्राप्त होता है, जिसके पास धन होता है, जिसके पास सुंदरता होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, परंतु वास्तविक कीर्ति तो जो भगवत भक्ति करने से प्राप्त होती है ना, वही वास्तविक कीर्ति है। उसी के अनुसार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परपट को देखिए, यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यानी यशस्वी यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है, यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त नहीं होता है वह अप्रसिद्ध है। यानी अपयश क्या है कि आपको भले ही कितना ही संसार में दूसरा मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, कितना ही लोग आपकी वाह वाह करें, परंतु यदि कृष्ण भक्त के रूप में आप नहीं जाने जाते हो तो वो आपका अपयश है, अपकीर्ति है आपकी, वही आपका अपमान है कि आपने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया लेकिन आपने भक्ति नहीं की। बाकी भले कितना ही बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए आपको, कितना ही धन प्राप्त हो जाए, कितना ही भौतिक दृष्टि से आप यशस्वी बन जाओ, लेकिन शास्त्र आपको केवल तभी यशस्वी मानता है जब आप कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्ध होते हो। इसलिए रामानंद राय ने बताया कि जो भगवान की भक्ति करके जो यश प्राप्त होता है ना, वही वास्तव में यश है। बाकी तो कितने सारे जो भी यश प्राप्त करते हैं वो हम सब भूल जाते हैं। कितने सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा धन होगा, बहुत सारा बल होगा, बहुत ज्यादा सुंदरता होगी, लेकिन वो उस समय तो याद आते हैं जिस टाइम हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं उनकी कीर्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन वास्तविक कीर्ति क्या है कि वो रहती दुनिया तक रहे, जैसे प्रहलाद का यश। अब देखिए, प्रहलाद जो है वो 5 साल का बालक है, 5 साल का बालक है और आज उसको बीते करोड़ों साल हो गए हैं। करोड़ों साल पहले एक प्रहलाद था और वो भगवान की भक्ति करता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, बाप ने उसको अपनी जायदाद का कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता था। और फिर आज करोड़ों साल बीतने के बाद भी एक बच्चा बच्चा प्रहलाद को जानता है। ना केवल भगवान का भक्त यशस्वी होता है, बल्कि उसके साथ जो लिंक में आ जाते हैं, भले वो राक्षस ही क्यों ना हो। हिरण्यक महाराज परीक्षित के बाद करोड़ों राजा आए, जब तक उनका राज्य चल रहा होता है तब तक जानते हैं न्यूज में, न्यूज पेपर्स में उनका नाम आता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सब एक किसी को याद ही नहीं रहते कितने सारे राजा होंगे, किसी को याद है, लेकिन महाराजा परीक्षित को आज भी हम याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। पांडवों को आज भी याद रखते हैं क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। तो जो भक्ति का जो यश होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। कितने सारे लोग होंगे इस भौतिक जगत में और भी जिनके पास दूसरे अलग अलग क्वालिटीज होंगी, कुछ होगा, लेकिन फिर भी जो भक्ति का जो यश है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ना केवल पहले जो बहुत पहले भक्त हो चुके हैं, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, उनकी केवल बात नहीं, उसके बाद भी चाहे हरिदास ठाकुर को ले लीजिए, मीराबाई को ले लीजिए, तुकाराम को ले लीजिए, संत कबीर को ले लीजिए, जितने भी भक्त आए हैं उनका यश जो है वो सदैव बना रहेगा। उनके विषय में वो जो कीर्ति है वो वास्तविक कीर्ति है। इसीलिए यदि किसी को कीर्तिमान बनना है तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और यदि कोई जीवन में अपमान है आपका, यदि अपकीर्ति है, यदि अपयश है, तो यही है कि आपने मनुष्य जीवन ले लिया। मनुष्य तो भगवान ने आपको बना दिया, परंतु मनुष्य जैसा कार्य नहीं किया, क्योंकि धर्मो ही एको अधिक विशेष धर्माविहीन पशु ही समाना। केवल धर्म, केवल भक्ति, केवल कृष्ण की भक्ति करना ही आपको पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है। और यदि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी धर्म विहीन हो, धर्म का मतलब होता है भक्ति, वो भी कृष्ण की। भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण व्रजा, सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम मेरी शरण में आओ। और यदि आपने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की तो ये सबसे बड़ी अपकीर्ति है, आपके मनुष्य जीवन पर सबसे बड़ा अपयश है। और समझो, यूं समझो कि जीवन पर धिक्कार है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो आगे श्री प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में ये दो पैराग्राफ हमने शुरू से पढ़े थे उनको एक बार देखेंगे कि ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अलग अलग गुण हैं, यानी कि ये जो भी गुण हैं, जैसे बुद्धि ज्ञान और सम्मोह, ये ऋषियों के गुण हैं, क्षमा सत्य दमा क्षमा ये ब्राह्मणों के, इसी तरह वैश्यों की क्षत्रियों के अलग अलग गुण होते हैं। ये सब की सारे के सारे जो गुण हैं वो अन्य लोकों में भी भिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। यानी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान ऐसी योजना बनाते हैं कि हमारे अंदर शुद्ध जो गुण हैं वो विकसित होते हैं। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं या हैं, उसका मूल कृष्ण है। जो भले अच्छा है भले बुरा है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसका मूल कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न होती हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर बताया कि भले ही हमें ऐसा लगता है कि वस्तुएं भिन्न भिन्न है, अब कैसे भिन्न है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा, सुखम दुखम भव भावो भयम चा भयमेव। सुख भी भगवान श्री कृष्ण से आता है और दुख भी भगवान श्री कृष्ण से आता है। तो आप ये कहोगे कि चलो सुख तो ठीक है भगवान से आता है, भगवान हमें देते हैं क्योंकि भगवान सुखमय है, आनंदमय है, तो सुख तो भगवान देते हैं, परंतु दुख भगवान की तरफ से हमें प्राप्त होता है या दुख वाला गुण जो है वो भी भगवान से मिल रहा, वो कैसे? तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से ना आता हो। सब कुछ के आदि भगवान है। भगवान हर एक सर्व कारण कारणम है। तो दुख के वो कारण कैसे हैं? इनडायरेक्टली है। जैसे श्री प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने कहा स्वामी जी अगर भगवान अच्छे हैं तो जीवों के अंदर खराब आदतें क्यों हैं? मतलब जीव झूठ क्यों बोलते हैं, बुराई क्यों करते हैं? अगर सब कुछ कृष्ण से आता है तो खराब चीजें कृष्ण से क्यों आती हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं देखो सूर्य सदैव रोशनी ही देता है ना, सूर्य कभी भी अंधकार नहीं देता, रोशनी ही देता है। तो मतलब सूर्य जहां होगा वहां पर रोशनी ही होगी। परंतु जैसे ही हम सूर्य से दूर हो जाते हैं तो हम अंधकार में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? कृष्ण कभी भी किसी को खराब गुण नहीं देते हैं, लेकिन जीव क्योंकि कृष्ण की बजाय माया की ओर चला जाता, तो माया कहाँ से आई है? जो अंधकार है वो भी कृष्ण का ही है। अब हम कृष्ण सूर्य को छिपा मतलब ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, तो वो अंधकार भी माया का ही उपज है। और ये जो अंधकार है वो भी सूर्य के ही कारण है। सूर्य के कारण क्यों है? क्योंकि सूर्य ने वहां पर अपना प्रकाश दिया ही नहीं है। ये सूर्य अगर यहाँ पर अपना प्रकाश देता तो हम लोग कोई और दूसरी जगह ढूंढते जहां पर सूर्य, क्योंकि हम कृष्ण से दूर होना चाहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे हम कि देखो अगर सूर्य शुरू से होता ही नहीं, ठीक है, सूर्य अगर होता ही नहीं तो अंधकार और प्रकाश सब सिमिलर होते। कहीं पर प्रकाश न होता, कहीं पर अंधकार न होता, सब इक्वल होता। लेकिन सूर्य है जिसके कारण रोशनी है, इसका मतलब है सूर्य है इसी के कारण अंधकार है ना, वरना तो किसी को पता ही नहीं होता अंधकार क्या है। तो इनडायरेक्टली अंधकार का कारण भी सूर्य ही है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बारिश जब होती है ना, तो बारिश जो है वो बस हो रही होती है, वो ये नहीं सोचती बारिश कि यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर मेरे होने का कोई कारण नहीं है, या यहाँ पर तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा खेत है, बहुत अच्छी यहाँ पर फसल उगेगी, वो अनाज उत्पन्न होगा, बहुत अच्छे फूल होंगे, बहुत अच्छे फल होंगे, यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक गिरती हूँ, या वहां पर कोई जहरीले पौधे का बीज किसी ने डाले हैं, कोई विषैले प्लांट्स वहां पर उगाए हैं, तो वहां पर मैं नहीं दूं। देखो अब बारिश हुई, उसी के कारण सारे जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, वो सींच रहे हैं। अब उस जो पेड़ है उसमें से अगर फल निकलते हैं, मीठे मीठे फल निकलते हैं, या फिर वहां पर कोई जहरीले फलों का वृक्ष बोया गया है, तो इसमें भले ही दोनों के उगने का सींचने का कारण जो है वो बारिश है, परंतु बारिश जो है वो उत्तरदायी नहीं है। वो कारण तो हो सकती है दोनों का, क्योंकि बारिश हुई है। अब बारिश के कारण ही वो विषैले पौधे भी बड़े हुए हैं और बारिश के कारण ये फल वाला पौधे भी बड़े हुए हैं। बारिश ने किसी को भी मतलब किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, परंतु ये तो प्रॉब्लम क्या थी कि बीज ऐसे डाले गए, और वो बीज क्यों खराब डाले गए थे? वो हमारे गुण और कर्मों के अनुसार, जहाँ पर यहाँ भौतिक प्रकृति में गुण है और गुणों के कारण जो है वो हम रजोगुणी या तमोगुणी कार्य करते हैं, और उन कर्मों के अनुसार हमारा स्वभाव जो है वो खराब हो जाता है, हम झूठ बोलते हैं, बुराई होती है। इसलिए हमें अपने गुणों को चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम गुणों को परिवर्तित करके शुद्ध सत्व में आएंगे ना, फिर कभी भी जीव जो है वो बुराई नहीं करेगा, फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा, फिर कभी गलत कार्य नहीं करेगा। एटलीस्ट हमें सत्व गुण तक आना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हमारा आहार सत्वगुणी होगा, जब हमारी एसोसिएशन सत्वगुणी होगी, जब हमारी मेंटेलिटी सत्वगुणी हो जाएगी, फिर हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तो इसी तरह जैसे हम अंधकार के लिए सूर्य को दोष नहीं दे सकते कि सूर्य आप यहाँ पर क्यों नहीं आए, सूर्य तो आए हैं, हम अंधकार की तरफ चले गए हैं। और उसी तरह भगवान केवल अच्छा ही देते हैं, भगवान की तरफ से बुराई नहीं आती, लेकिन क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए इसी के कारण हम गलत कार्य करते हैं। उसी तरह बारिश की वृक्ष जो विषैला वृक्ष है उसके लिए हम बारिश को दोष नहीं दे सकते क्योंकि बारिश तो सबके लिए हो रही है, लेकिन क्योंकि हमने बीज ही विषैला बोया है तो फिर उसका परिणाम भी विषैला होता है। अब इस श्लोक में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बात जो समझने की है वो क्या है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, वो ऐसे नहीं है, मतलब ना उनका रूप है, ना उनका रंग है, ना उनका नाम है, वो निर्गुण है, निराकार है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दमा, सुख, दुख, ये सब मेरे द्वारा आपको दी जाती हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। अब मतलब भगवान जब ये सारे गुण हमें देते हैं, जीवों को देते हैं, तो इसका मतलब है ये सारे गुण भगवान के अंदर होने चाहिए। अगर भगवान निर्गुण है तो फिर हमें वो कैसे ये सब क्वालिटीज दे सकता है, अगर भगवान के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो भगवान हमें कैसे दे सकता है। भगवान निर्गुण है, मगर निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि ना उनका नाम है, ना उनका रूप है, ना उनके अंदर, अब भगवान के अंदर यदि करुणा नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि कृष्ण कितने करुणामय है, कि वो अपनी जो राक्षसी पूतना जो उनका वध करने के लिए आई थी उन्हें भी अपनी माता की गति प्रदान करते हैं। अगर भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है तो करुणा का गुण कैसे आ सकता है, अगर भगवान के अंदर भक्त वत्सल्यता का गुण नहीं है तो हम किस विश्वास के साथ भगवान के पास जाएं कि अवश्य हमें स्वीकार करेंगे, हम अपराधी हैं। फिर भी तो भगवान के अंदर क्वालिटीज हैं, परंतु भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भगवान सदैव ऊपर रहते हैं। तो इस विषय में एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में आती है। वे बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं और उसमें कहते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एववा। यानी वह भगवान जिनका न जन्म है, न कोई कर्म है, न नाम है, न रूप है, न गुण है, न दोष है, ऐसे भगवान आकर मेरी रक्षा करें। वो बार बार, बहुत ही बड़ी प्रार्थना है, बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान आए जो देवताओं के भी स्वामी है, वो भगवान आए जिनका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, जिनका कोई गुण नहीं है, ऐसे भगवान मेरे पास आए मेरी रक्षा करने के लिए। और इतनी प्रार्थना करने के बाद उनकी रक्षा करने के लिए कौन आए, विष्णु भगवान है। अब देखिए विष्णु भगवान का नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, तो फिर इसका क्या ये मतलब है कि गजेंद्र किसी और को पुकार रहे थे और आगे कोई और, नहीं ऐसा नहीं भक्तों। वास्तव में गजेंद्र जो बुला रहे थे वो ये कह रहे थे जिनका कोई भौतिक नाम नहीं है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, ये सब जो भगवान के नाम रूप गुण जो भी हैं वो सब आध्यात्मिक है। तो भगवान का वास्तव में भगवान कोई निर्जीव नहीं है, भगवान व्यक्ति हैं, भगवान के भी अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, भगवान के अंदर करुणा है, भगवान के अंदर भक्त वात्सल्य है, भगवान के अंदर हम सबके लिए प्रेम है, भगवान के अंदर संपूर्ण ज्ञान है, तो तभी तो भगवान हमें ये सब क्वालिटीज देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो ये जानना था एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। अर्जुन जो ये जान लेता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि जो मेरे जन्म है, मेरे जो कर्म है, वो सब भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो क्या होता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति, जब वो देह को त्यागता है तो दूसरा जन्म उसे नहीं लेना पड़ता, फिर किधर जाता है, मामेति, वो मुझे प्राप्त करता है। तो हमें यह जानना चाहिए और कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। आज हमने श्लोक नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट किया, इसका तात्पर्य आप सब
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना प्रेम से श्रवण करते हो, कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य किया करो ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।